मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। मित्रों, आज जून का पहला दिन है, 1 जून 2017, और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के लिए मैंने जो विषय चुना है बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, और इसका शीर्षक है निजी स्कूलों पर नियंत्रण। इस विषय को मैंने क्यों चुना है मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा, और इस विषय के तहत हम लोग दो मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे जो सिविल सर्विस का जनरली एंगल होता है, और वह है कि निजी स्कूलों पर नियंत्रण की बात क्यों आ रही है, और दूसरा इसका इश्यू जो पॉइंट होगा दोस्तों वो होगा कि फिर नियंत्रण किस तरीके का किया जा सकता है, किस तरह के नियंत्रण होने चाहिए। इन दो मुद्दों पर हम विशेष रूप से बात करेंगे। पहले आइए मैं इस बात को क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि यह विषय मैंने क्यों चुना है। देखिए, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो प्री के हों या मेंस के हों, अगर आप थोड़ी भी बारीकी से देखेंगे, थोड़ी सी डेप्थ में जाएंगे, तो बहुत इसको समझने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है कि ज्यादातर प्रश्नों का संबंध करंट अफेयर्स से होता है। कोई ना कोई समसामयिक घटना ऐसी होती है जिसको बेस बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां तक एजुकेशन का सवाल है फ्रेंड्स, आप सिविल सर्विस के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, हर साल आपको मेंस में कोई न कोई एक प्रश्न जरूर एजुकेशन सिस्टम से मिलेगा, चाहे फिर वो हायर एजुकेशन से हो, चाहे वो मिडिल लेवल एजुकेशन का हो, चाहे वो बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन का ही क्यों ना हो, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। हालांकि जब आप एक शब्द सुनते हैं तो मन में थोड़ी निराशा का भाव आता है कि एक क्वेश्चन के लिए हम एक टॉपिक तैयार करें, तो आप एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, एक ही क्वेश्चन, और एक एक करके ही आपको ढेर सारे क्वेश्चन इकट्ठे करने हैं। इस लिहाज से आप इसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले लगभग एक साल से एजुकेशन के फ्रंट में दो सबसे ज्यादा विवादास्पद मुद्दे हमें दिखाई पड़ रहे हैं। पहला हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आप देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंसी को लेकर के एक बहस चल रही है। लोगों को लगता है कि सरकार हायर एजुकेशन पर अपना नियंत्रण कसना चाह रही है, उनकी जो इंडिपेंडेंसी है उनको बाधा पहुंचा रही है, उसको लेकर के फिर एक बहस चल रही है। दूसरा जो स्कूल्स हैं, मतलब आप कह लीजिए कि प्राइमरी लेवल से लेकर के हायर सेकेंडरी लेवल तक के, ये मुद्दा फ्रेंड्स अभी जब एडमिशन्स शुरू हुए तब ये बहुत ज्यादा गर्माया। गर्माने का कारण ये था कि स्कूलों ने अचानक अपनी फीस बहुत बढ़ा दी। ऐसा नहीं कि ये उससे पहले नहीं कर रहे थे, इससे पहले भी कर रहे थे। एक तो इन्होंने फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी, दूसरा यह हुआ कि इन्होंने कमाई करने के बड़े विचित्र विचित्र किस्म के तरीके निकाल लिए। आपको किताबें यहीं से खरीदनी पड़ेंगी, कॉपियां यहीं से खरीदनी पड़ेंगी, ड्रेसेस यहीं से खरीदने पड़ेंगे, टाई जूते यहां से खरीदने पड़ेंगे, फीस में ऐसे विचित्र विचित्र फीस के कंपोनेंट डाल दिए कि आप उनको सुनकर के हंसेंगे। आपको मार्कशीट के लिए अलग से फीस देनी है, एनुअल फंक्शंस के लिए अलग से फीस देनी है, बिल्डिंग के लिए अलग से डोनेशन देना है, इस तरीके की फीस जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, और फिर जो मंथली फीस है वो अलग से है ही। तो सच पूछिए तो जो निजी स्कूलों ने जब इस तरीके से बेतहाशा फीस बढ़ाना शुरू किया तो पेरेंट्स में एक आक्रोश का भाव पैदा हुआ, पेरेंट्स के ऑर्गेनाइजेशंस बने, कुछ लोग कोर्ट कचहरी में भी गए, उन लोगों ने आंदोलन भी किए, मैनेजमेंट के खिलाफ एक तरीके से वो विरोध पर उतारू हो गए, और देखते ही देखते यह मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। इस पर अखबारों में लिखा जाने लगा, इस पर पार्लियामेंट में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ, चैनल्स ने इस पर प्रोग्राम प्रोवाइड किए, और डेफिनेटली यह एक ऐसा विषय था जिस पर बात की जानी चाहिए थी। बात इसलिए की जानी चाहिए थी फ्रेंड्स क्योंकि भारत जैसे देश में जो एक डेवलपिंग स्टेज पर है, जहां कि आप मान के चले कि 1/3 पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ऑलमोस्ट 20-25% बिलो पॉवर्टी लाइन न भी हो तो चलिए गरीबी में तो रह ही रही है, वहां अगर हम एजुकेशन को इतना महंगा बना देंगे तो सीधी सी बात है कि जो समाजवादी समाज की स्थापना की जो अवधारणा है, जो हमने अपने उद्देशिका में शामिल किया हुआ है, उसे हम कभी भी पा नहीं सकेंगे। इसके बाद एजुकेशन के फील्ड में हम एक बात और देख रहे हैं जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को थोड़ा सा चिंतित भी करती है कि जब से हमने उदारीकरण का रास्ता अपनाया है तब से आप देखें कि सरकार कुछ ऐसे सेक्टर से जहां से अपने को विड्रा करती जा रही है, जिसमें दो ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जिसमें सरकार को और ज्यादा शामिल होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने हाथ खींचती चली जा रही है। उसमें एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ सेक्टर। आप देखिए कि सरकारी अस्पतालों की क्या हालत हो गई है, वही स्थिति सरकारी स्कूलों की भी है। अब यह बात अलग है कि स्कूलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है क्योंकि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन स्कूलों में सुविधाएं नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, टीचर्स हैं भी तो उनको सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी मिल भी रही है तो बहुत कम सैलरी मिल रही है, टीचर्स हैं तो फिर वो स्कूलों में पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, और अगर पढ़ाने आ रहे हैं तो उनका अपना स्तर इतना ज्यादा खराब है कि उनको खुद नहीं मालूम कि क्या पढ़ाना है। तो इसीलिए जब भी सर्वे हुए हैं भारतीय एजुकेशन सिस्टम के तो उसमें जो शो होता है स्तर वो बहुत पुअर है, मतलब पुअर क्या, एक दयनीय स्थिति दिखाई देती है कि लड़का पांचवी छठवीं पास हो चुका है, यहां तक कि आठवीं पास हो चुका है, उसे बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती, उसे चीजें उसे लिखना नहीं आता, शुद्ध लिख नहीं सकता, वो पढ़ नहीं सकता, ये स्थितियां हैं। और जब रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो फिर तो बहुत ही बुरी हालत होती है। जब सरकारी स्कूलों की ये हालत होने लगी तो इसको रिप्लेस करने के लिए निजी स्कूल आए, प्राइवेट स्कूल आए। प्राइवेट स्कूल की खासियत यह होती है कि एक तो उनकी बिल्डिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, उसमें दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो जो आम आदमी है उसके दिमाग में ये एक अवधारणा बन जाती है कि नहीं, ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये बहुत अच्छे स्कूल होंगे, जिन्हें हम इंग्लिश मीडियम स्कूल भी कहते हैं, इन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं, कुछ लोग इसे पब्लिक स्कूल कहते हैं। तो लोगों को लगता है कि नहीं, यहां पढ़ाई अच्छी होगी। और इस बीच में लोगों में यह चेतना जागृत हुई है और नीचे के तबके में भी यह चेतना जागृत हुई है, जो बहुत अच्छी बात है, वो ये कि नहीं, हम चाहे भूखे रह लेंगे भले ही, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे और अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे ताकि उसका भविष्य अच्छा बन सके, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। मित्रों, आप देखिए कि एक ऐसा दौर है कि जब ये सारे संकट चल रहे हैं उसी दौर में हमारे सामने एक फिल्म आती, हिंदी मीडियम एक फिल्म आती है, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई संबंध सामाजिक यथार्थ से तो है। तो ये पेरेंट्स की जो भावना एजुकेशन को लेकर के है वो उसका रिफ्लेक्शन है, और ये एक अच्छी भावना है कि बच्चों को हमें अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इसका मतलब यह कि निजी स्कूलों की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, वहां भीड़ होती चली जा रही है और वो अपनी फीस बढ़ाते चले जा रहे हैं, और ये फीस इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा होती जा रही है कि जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं उन तक के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो दोस्तों, इस पर एक जबरदस्त बहस पूरे देश में चल ही रही है, इसका कोई अभी निदान नहीं है, लेकिन एक बात जरूर रही कि जब ये सारी समस्याएं सामने आई तब लोगों ने फिर अपने अपने तरीके से उपाय सुझाने शुरू किए कि अब किया क्या जाए, इसका हल क्या है। तो दोस्तों, उस हल के रूप में नियंत्रण की बात की जाने लगी। अब आप देखिए कि दो तरफा चीजें हो रही हैं, एक तो हायर एजुकेशन को इंडिपेंडेंसी देने की बात हो रही है ताकि वो खुले रूप में काम कर सकें, एजुकेशन का जो दायरा है वो सीमित न रह जाए, वहां इनोवेशन हो, एक सोचने विचार करने की आजादी हो, हायर एजुकेशन के लिए जरूरी भी है, वहां ये मांग हो रही है। और जो मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल की जो एजुकेशन है इसमें ये मांग हो रही है कि नहीं, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, इन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, नहीं तो ये फिर जनता के मन में जो एजुकेशन को लेकर एक उत्साह और उत्तेजना है उसका ये मिसयूज कर रहे हैं, और लोगों का आर्थिक शोषण भी हो रहा है, मतलब भावनात्मक आधार को बनाकर के ये लोगों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि किस तरीके का नियंत्रण हो। देखिए, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, एक तो हमारे पास सीबीएसई का पैटर्न है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो चलिए वो अपने स्कूलों का अलग तरीके से नियमन करती है, और चूंकि वो सरकारी स्कूल हैं तो उनकी कोई बात भी नहीं है, जो नियंत्रण की बात हो रही है वो सिर्फ निजी स्कूलों के लिए हो रही है। है ना, सरकारी स्कूलों के लिए नियंत्रण की बात नहीं है, सरकारी स्कूलों के लिए तो सुधार की बात है कि उनमें कैसे सुधार आए, कैसे वहां अच्छे टीचर्स हों, कैसे इंश्योर किया जाए कि टीचर्स आए और फिर वो पढ़ाई करें, पढ़ाई की गुणवत्ता कैसे सुधरे, कैसे एनरोलमेंट बढ़े, इन सब की बात हो रही है, वहां नियंत्रण की बात नहीं हो रही, क्योंकि सरकार अपने रूल्स रेगुलेशन के तहत उसको नियंत्रित कर रही है। जो नियंत्रण की बात हो रही है वो प्राइवेट स्कूल्स के संदर्भ में हो रही है। तो दोस्तों अब मैं कुछ नियंत्रण के आपको पॉइंट्स बताता हूं, ये फूड फॉर थॉट है कह लीजिए, कि आप सबके विचार करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको दे रहा हूं, आप इन पर विचार करें, इनमें अपने ढंग से तब्दीली करें, कुछ और नए पॉइंट लेकर के आए जो आपको कमजोर लगते हैं उन्हें आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना, ये तो एक विचार का क्षेत्र है, तो मैं कुछ चीजें आपको विचार के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। पहली बात तो यह है फ्रेंड्स कि जो लोगों ने सुझाए हैं मैंने वहीं से इकट्ठे किए हैं, कुछ अपनी तरफ से सोचने की कोशिश की है, वह है एक फ्रेंड्स कि जो स्कूलों का जो पूरी तरह से नियंत्रण है, नियमन है कह लीजिए, रेगुलेशन है, वो राज्य सरकारों के हाथ में होना चाहिए। देखिए जो एजुकेशन है बेसिकली वो राज्य सूची का विषय है, स्टेट सब्जेक्ट है, उसके लिए जो भी कानून होंगे वो राज्य ही बनाएंगे, सब कुछ राज्य को बनाना होगा। अभी होता क्या है कि अगर वो एक बार उनको लाइसेंस जैसा कह लीजिए अनुमति दे देते हैं तो अपना वो क्राइटेरिया पूरा कर देते हैं, उनको अनुमति दे दी जाती है, इसके बाद सब कुछ व्यवस्था प्रबंधन उनके अपने हाथ में होता है, वो क्या फीस रखेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, किन टीचर्स की भर्ती करेंगे, टीचर्स कैसे होंगे, वो सारा का सारा नियंत्रण उनके अपने हाथ में होता है, जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, स्कूल का मैनेजमेंट होता है। और बेसिकली ये जो स्कूल है ये मैनेजमेंट भले ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लेकिन जिसने उसमें पैसा लगाया उसके लिए वो एक बिजनेस ही बन गया है, और इसीलिए इस तरह के संकट दिखाई भी देने लगे हैं जो अब वास्तव में देश के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। तो उनके लिए तो एक बिजनेस है कि हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, इतना हमारा खर्चा हो रहा है, साल भर में इतनी कमाई होनी चाहिए। तो इस पर यह कि अगर राज्य सरकार रेगुलेट करने लगेगी इनको, राज्य सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे, तो फिर स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। फिर यह है दोस्तों कि ये जो नियंत्रण हो राज्य का वो किस तरीके का हो, पूरी नियंत्रण की बात नहीं है, फिर तो सरकारी स्कूल ही हो जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर प्राइवेट स्कूल्स आगे नहीं आएंगे अगर राज्य सरकार बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर देगी। तो ये नियंत्रण भी जो है फ्रेंड्स वो दो तरह के होने चाहिए। पहला तो यह कि गवर्नमेंट एजुकेशन के कुछ स्टैंडर्ड निर्धारित करें, कुछ मानक बनाए, और उस मानक पर वो स्कूल खरे उतरने चाहिए। ये सिलेबस होगा, इस तरह की पढ़ाई होगी, इतने दिन की क्लासेस लगेंगी, जो भी उनको मानक बनानी है, जो टीचर्स भर्ती किए जाएंगे उनका ये लेवल होगा, तो इस तरह के मानक बनाएं, नंबर वन। दूसरा जो नियंत्रण होगा वो ये होगा कि कैसे जो पब्लिक है, जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स का जो ये शोषण किया जा रहा है स्कूलों के जरिए, जो अभी हम लोगों ने फीस बढ़ाने वगैरह की बात की, तो उन पेरेंट्स को कैसे उस शोषण से बचाया जा सके, इन दो बिंदुओं पर राज्य सरकार सबसे ज्यादा विचार करे और इसके लिए फिर एक सिस्टम तैयार करे। तीसरी बात यह भी कही जाती है फ्रेंड्स कि चलिए राज्य सरकार तो अब एक हिस्सा है, उनका अपना कार्यपालिका का क्षेत्र होगा, वो अपने ऑफिसर्स डिप्यूट कर देंगे, वो अपना काम करते रहेंगे, देखते रहेंगे, अभी भी कहीं कहीं ऐसा है भी, लेकिन एक उपाय यह हो सकता है कि अलग से तीसरा सुझाव कि एक अलग से अथॉरिटी बनाई जाए, जिसको नियामक आयोग जैसा आप कह लें, अथॉरिटी, अर्ध न्यायिक अथॉरिटी जैसा कुछ कह लीजिए, ट्रिब्यूनल जैसा नहीं, लेकिन एक ऐसी अथॉरिटी जो जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं, उस तरह की एकदम वैधानिकता की मैं बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी एक ऐसा आयोग हो जहां लोग पेरेंट्स जा सकें, स्कूल की शिकायत कर सकें और वहां बकायदे उनकी सुनवाई हो, तो इसे आप एक रिड्रेशल बॉडी जैसा कह सकते हैं कि जो शिकायतों का निवारण कर सके, और ये शिकायत का निवारण करने वाला जो तंत्र हो ये शासकीय तंत्र हो, ये कोई एनजीओ जैसा ना हो, शासकीय तंत्र हो, और उसके पास कुछ अधिकार भी हो कि अगर उसने कोई बात कह दी गई है तो वो बात फिर मानी जाएगी, और ये जो निकाय जो बनेगी, जो तंत्र जो स्थापित होगा दो चीजों से उसको बचा के रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो ये तंत्र भी बेकार हो जाएगा। वो उसमें एक बात है फ्रेंड्स कि उससे नौकरशाही की दखलंदाजी से बचाया जाए, नो ब्यूरोक्रेसी। अब उसका आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिए कि उसमें उस एक एजुकेशनिस्ट हों, एक जुरिस्ट हों, मतलब जो जुडिशरी से हों वो हों, इस तरह के व्यक्ति हों, और दूसरा उसको पॉलिटिक्स से बचाया जाए, यानी कि पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी इन दोनों से उस तंत्र को अलग रखा जाए। उससे क्या होगा कि जो निजी स्कूल है उनके मन में कहीं ना कहीं एक भय, एक हिचसी की तो स्थिति होगी। इसके बाद अब मित्रों एक सुझाव ये भी हो सकता है कि स्कूल 3 सालों के लिए अपने फीस स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करें, 3 साल के लिए, कि 3 साल तक हमारी यह फीस होगी और इसके बाद उसमें कोई बदलाव न किया जाए, उसमें कोई बदलाव न किया जाए। एक बार फीस डिक्लेयर हो गया तो बात खत्म हो गई, और इसके बाद जब 3 साल के बाद फिर से रिवाइज होगा तो उसका भी एक फार्मूला हो, क्योंकि महंगाई और इन सब चीजों के अपने अपने फार्मूले हैं, तो उसी के आधार पर एक फार्मूला फीस बढ़ाने के बारे में भी रखा जाए, उससे ज्यादा वो फीस नहीं बढ़ा सकते। तो मित्रों ये कुछ सुझाव मैंने 5-6 जो बड़े जो कह लीजिए कि मूलभूत सुझाव हो सकते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, जो अलग अलग समय पर अलग अलग अथॉरिटी ने अपने अपने ढंग से सुझाए हैं, अलग अलग व्यक्तियों ने सुझाए हैं। जहां तक दूसरे छोटे मोटे सुझावों की बात है उसमें आप बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हैं कि स्कूल व्यापार न करें, कि वो ड्रेस भी बेच रहे हैं, किताब कॉपी भी बेच रहे हैं, कानून बना करके इन चीजों को बिल्कुल बैन कर दिया जाए। तो इस तरह के सुझाव भी जैसे जैसे जो जो समस्याएं आपके सामने आती हैं, जिन समस्याओं से आप रूबरू हुए हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ ऐसे तथ्य रख सकते हैं। आप एक ग्रुप ऐसा भी बनाया जा सकता है या एक तंत्र ऐसा बनाया जा सकता है जिसमें प्रबंधन के लोग हों और इधर अभिभावक भी हों। हालांकि जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी संस्थाएं हैं और यहां तक कि जो स्वायत्त शासी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें इस तरह की कमेटी बनाई गई है जिसमें स्कूल के प्रबंधन के लोग हैं और अभिभावक भी हैं, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव तरीके से काम प्राइवेट स्कूल्स पे नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि यहां कैपिटेशन फीस, बच्चों को एडमिशन दिलाने की भाग दौड़ जद्दोजहद इतनी ज्यादा है कि निजी स्कूलों को इस बात की चिंता ही नहीं है कि हमारे यहां अगर इमेज थोड़ी सी खराब हो गई तो एडमिशन नहीं होंगे, ऐसा उनके सामने संकट नहीं है। अभी तक तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है तो हो सकता है कि आगे जाकर के ऐसी स्थिति पैदा हो। लेकिन मित्रों जिस देश में इतनी बड़ी आबादी है, जो देश एक प्रकार से डेवलपिंग स्टेज पर है, इतने बड़े लोग, इतने बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं, लिटरेसी का भी देखिए जो परसेंटेज है 25% तो अभी भी हमारे इलिटरेट ही लोग हैं वहां, और जिसने समाजवादी समाज की स्थापना की बात की हो वहां इसमें कोई दो राय नहीं कि कम से कम 11th तक की जो हमारी 12th तक की जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है, और यह ध्यान दोनों ही स्तरों पर होना चाहिए, क्वांटिटी के स्तर पर भी यानी कि वो सबको अवेलेबल हो सके, अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स देने का कोई मतलब नहीं है, और क्वालिटी के स्तर पर भी, यानी कि क्वांटिटी को तो हम देख रहे हैं लेकिन उसमें क्वालिटी फिर इग्नोर हो रही है। तो मित्रों ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए हैं निजी स्कूलों पर नियंत्रण के लिए, इस पर आप लोग और विचार करें। एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि इस टॉपिक को आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलें और लगातार अपडेट करते रहें और एनरिच करते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।